अध्याय पांच उत्तर दृश्य समकालीन कविता की दशा अज्ञेय के बाद। बीच बीच में अपने समय की कविता पर विचार करते रहना जितना उसके स्वस्थ रहने का लक्षण है उतना ही उसके अस्वास्थ्य की चिंता भी है। कुछ समय पूर्व याद पड़ता है कि किसी अंग्रेजी पत्र में पढ़ा था कि ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक लंबी बहस रखी गई थी कविता की स्थिति पर विचार करने के लिए। वह विचार प्रक्रिया निश्चय ही उस संसद के योग्य थी। इस बहस में एक मान्य सदस्य ने यह विचार व्यक्त किया कि उनके जातीय जीवन में कविता का स्थान कम होता गया है और यह चिंता की बात है। सदस्य महोदय का आग्रह था कि कविता को ब्रितानी जीवन में और महत्व मिलना चाहिए। इस प्रसंग में उन्होंने कवि की उक्ति दोहराई, मैन मस्ट हैव टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, अर्थात मनुष्य को कुछ देर थमने और इधर उधर निहारने का समय मिलना चाहिए। बहस के एक हिस्से इस हिस्से को पढ़कर कुछ रोचक भी लगा था कि जिस जाति ने औद्योगिक क्रांति के माध्यम से समूची मानव जाति को एक अनोखी आपाधापी में डाल दिया है वही लोग अब इस बात के लिए चिंतित हैं कि मनुष्य को कुछ समय अपने लिए इधर उधर निहारने को होना चाहिए। हमारे देश की चिंता कविता को लेकर कभी भी ऐसी नहीं है, यद्यपि औद्योगिक और तकनीकी दबाव हमारे ऊपर भी तेजी से बढ़ रहा है, पर इस तकनीकी दबाव ने एक और समस्या उत्पन्न की है जो कविता की प्रकृति को छेड़ रही है। यह समस्या भी कविता मात्र की है, पर हमारी परंपरा और ऐतिहासिक परिस्थिति में वह एक खास ढंग से उभरी है। तकनीक ने तरह तरह की दूरियाँ कम की हैं और अनुभव के पकाने में समस्याएं खड़ी की हैं। अभी तक समाचार पत्र, रेडियो और फिल्म ऐसे माध्यम से जिनसे संचार की गति में सहसा तीव्रता आई थी, अब दूरभाष, दर्शन और सैटेलाइट के प्रसारण ने सारे संसार के घटनाक्रम को हर जगह तात्कालिक बना दिया है। परिणाम इसका यह हुआ कि अब सूचनाएं हमें तत्काल मिलती हैं, पर इन सूचनाओं के अंबार में से अनुभूति का निथरना मुश्किलतर हो गया है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्वैलिटी, या फिर प्रसाद का आंसू जो घनीभूत पीड़ा थे मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यह रचना प्रक्रिया अब धीरे धीरे अपने ताप में घट रही है। अनुभव का अनुभूति में बदलना और अनुभूति का कविता हो जाना यह एक लंबी प्रक्रिया है। संचार साधनों की तीव्रता इसमें बाधक हुई है। अज्ञेय ने रचना प्रक्रिया पर कई जगह लिखा है, एक प्रसिद्ध अंश है, बूंद स्वात की भले हो बेधती है मर्म सीपिका उसी निर्मम तरा से वज्र जिससे फोड़ता चट्टान को भले फिर व्यथा के तम में बरस पर बरस बीते एक मुक्ता रूप को पकते। यह मुक्ता रूप का पकना आज की आपाधापे में मुश्किल हुआ है। आलोचक ने अन्यत्र लिखा है कि अनुभव का अनुभव अनुभूति है और फिर अनुभूति का अनुभव कविता है। जाड़ा लगना अनुभव है और यह कि जाड़ा लग रहा है अनुभव का अनुभव है, यानी अनुभूति या की भाषा है। फिर इस अनुभव के अनुभव का अनुभव कवि के यहाँ संभव होता है, शिशिर की शर्वरी मिश्र पशुओं भरी। प्लेटो इस प्रक्रिया को शायद कहता कि यह यथार्थ से तिहरी दूरी पर है, पर वस्तुतः यह तिहरी दूरी नहीं अनुभव की तिहरी परत है, या कि अनुभव संश्लेष है जो यथार्थ से आगे यथार्थतर और यथार्थतम रूप है। किंतु फ्यूचर शॉक या भविष्य के धक्के से के इस युग में अनुभव का संश्लिष्ट और सघन होना भी कठिन हो गया है। आज तो लगता है कि चमड़ी भर के स्तर पर हम जी पा रहे हैं, ऐसे में कविता की दशा सचमुच विचारणीय है। और कविता ही नहीं, भाषा के अपने अस्तित्व की भी समस्या है। आधुनिक संचार साधनों में दो वृत्तियां देखी जा सकती हैं, एक तो तात्कालिकता और दूसरे दृश्य चित्रों का तरह से बदलना। तात्कालिकता का गुण तो संचार माध्यम मात्र की विशेषता है, पर दूसरी वृत्ति फिल्म, टेलीविजन और अब रंगीन कॉमिक प्रकाशन में देखा जा सकता है। इन माध्यमों ने भाषा के परंपरागत रूप को आहत किया है। वर्ण अब वर्णमाला के रूप में नहीं है, रंग के अर्थ में जैसे सीमित हो गया हो। इन माध्यमों ने और किसी कदर सीधे दूरभाष प्रणाली ने, जैसा कि टिप्पणीकार ने कहा है, प्रौण साक्षरों की एक नई जमात पैदा कर दी है। ये वर्णमाला वाली भाषा से विमुख होते जा रहे हैं। उन्हें या तो भाषा सुनाई देती है या चित्रों के रूप में दिखाई देती है। भाषा से सीधा साक्षात्कार उनका बहुत कम होता है। इस प्रवृत्ति ने भी सूचना की तात्कालिकता पर अधिक बल दिया है। अनुभव के पकने से उनका सरोकार कम होता गया है। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों में अनुभूति के ऊपर सनसनी का महत्व बढ़ा है और सनसनी की मात्रा स्वभावतः मादक पदार्थों की मात्रा की तरह बढ़ती जा रही है। इसके साथ यह भी लक्षित किया जा सकता है कि हिंसा हर प्रकार की बढ़ती पर है। भाषा का संस्कार कम होने पर उसके स्थूल स्थापन के रूप में हिंसा बढ़े तो शायद यह भी ठीक क्रम ही है। कविता तो सनसनी को प्रशमित करने का एक सभ्य उपाय मानवता ने आविष्कृत किया था, पर क्रमशः सनसनी से और हिंसा से चतुर्दिक घिरती जा रही है। कविता भाषा का सघन और सृजनात्मक रूप है, और जब भाषा स्वयं बचाव की मनोदशा में हो तो कविता को सुरक्षित रखना संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। समकालीन हिंदी कविता में ये दबाव कई रूपों में दिखते हैं। एक तो सपाट बयाने की वृत्ति और दूसरे व्यंग्य की मुद्रा। पर यहाँ तक आने के पहले आधुनिक कविता के कुछ आरंभिक चरणों की विवेचना जरूरी होगी। इसके लिए अलग अलग चरणों से तीन संध्या चित्र उपस्थित किए जा रहे हैं। पहला चित्र आधुनिक खड़ी बोली कविता के प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास से है। हरियौध का यह वर्णन हमारी कविता के इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह संध्या चित्र एकदम सीधा साधा वर्णन है। तत्सम शब्दावली के आग्रह के बावजूद काव्य भाषा इतिवृत्तात्मक है। दिन डूबना, आकाश का कुछ लोहित हो जाना और वृक्षों की फुनगियों पर डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरणों का पहुंचना, यही सीधा दृश्यालेख है। इस इतिवृत्त प्रधान कविता के बाद छायावाद का आगमन होता है। सुमित्रानंदन पंत का प्रसिद्ध संध्या चित्र है एक तारा। तर शिखरों पर वह स्वर्ण भग उड़ गया, खोल निज पंख सुभग, किस गुहा नीड़ में रे किस मग। प्रस्तुत एकदम वही है जो हरियौध के लिए था, पर अब पंत की भाषा लाक्षणिक हो गई है। हरियौध ने डूबते सूर्य की किरणों का लाल रंग वृक्ष की चोटी पर देखा था। सुमित्रानंदन पंत के लिए वह लालिमा मात्र न रहकर एक स्वर्ण विहग बन गया, जो धीरे धीरे सूर्य के अस्त होते होते उड़कर जैसे अपने निविड़े में विश्राम के लिए पहुंच गया। यों पहले का सीधा वर्णन अब एक लाक्षणिक प्रयोग में बदल गया है। इसके बाद आते हैं प्रयोगशील नए कवि शमशेर बहादुर सिंह। शाम के रंगों का चित्रण उनके यहाँ भी कई रूपों में हुआ है। यहाँ प्रस्तुत है एक पीली शाम। एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुक्कमल कृष्णमलान हारा सा, कि मैं वह हूँ मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू सांध तारक सा अतल में। यहाँ संध्या का रूप सुस्तर होता है। तीन अनुभव चित्र एक साथ बांटे गए हैं। शाम का रंग भी बदला है, लोहित से सुनहला और सुनहला से पीला, यानी रंगों के मेल में से लालिमा हल्की हुई है और पीलापन क्रमशः बढ़ता गया है। इसके पीछे स्पष्ट ही समकालीन यथार्थ का आग्रह है। कविता के तीन अनुभव चित्रों में से पहला पतझर में डाल से जरा अटका हुआ पत्ता, दूसरा है आँख में अटका हुआ आंसू और तीसरा है संध्या तारा जो डूबने डूबने को है। यहाँ न ध्वनि शास्त्री का कोई मुख्यार्थ है और न कोई व्यंग्यार्थ, और न ही एलियट की दृष्टि से कोई अलग मनोभाव है, और न कोई अन्य ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत अप्रस्तुत विधान का जो द्वैत अब तक काव्य चिंतन में चला आ रहा था वह एक बारगी डूब जाता है। अब जैसा कहा गया, ये तीनों अनुभव सूत्र एक साथ बंट दिए गए हैं। तीन बिंब एक के ऊपर एक आरोपित हैं। जटिलतर और संश्लिष्टतर होती अनुभूतियों के क्रम को पाठक एक साथ साक्षात्कृत करता है। यह नई कविता के रचना विधान की महत्वपूर्ण और गुणात्मक उपलब्धि कही जा सकती है। पर समकालीन कविता इस विकास को आगे कई चरणों में साध नहीं पा रही। खड़ी बोली काव्य भाषा मैथिली शरण गुप्त से लेकर नई कविता तक अपूर्व क्षमता विकसित कर लेती है, और इसके साथ साथ उसका रचना विधान अर्थ की दृष्टि से सघन और सृजनात्मकता होता गया है। पर नई कविता के बाद यह काव्य भाषा दो विरोधी मोड़ों पर घूमती नजर आती है। एक ओर तो कविता को बयान की शक्ल में पेश किया गया है। धूमिल ने अपने संकलन संसद से सड़क तक के मुखबंध में कविता को पहले और मूलतः बयान का माना है। जाहिर है कि कविता के इस रूप में वक्तृत्व को यानी बात को फैलाकर चुटीले ढंग से कहने को अनुभूति संघनन के ऊपर महत्व मिला है। चौथा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय को भी शिकायत है कि वहाँ संकलित कविताएं बोलती अधिक हैं और कहती कम हैं। समकालीन कविता की एक दूसरी मुद्रा है व्यंग की। यह व्यंग या कि आयरनी का रूप नई कविता में भी था, एक उपकरण के रूप में, पर बाद में चलकर इसे पूरी विधान के केंद्र में रख दिया गया। यह कुछ वैसे ही हुआ जैसे आप हर समय बिराते हुए चले किसे, शायद सारे संसार को और अंततः अपने आप को भी। तो इन दोनों विधानों में यथार्थ की पकड़ अतिरंजित होकर छूट जाती है। एक स्थिति में वह यथार्थ का अति सरलीकरण करती है तो दूसरी ओर उसे विद्रूप करती है। और रोचक विडंबना यह है कि दोनों प्रक्रियाएं यथार्थ पर बल देने के आग्रह में विकसित हुई हैं। यथार्थ के बहुआयामी और बहुस्तरीय रूप को समझने के बजाय कविता के ये दोनों मोड़ किसी न किसी आग्रह के साथ उसके एक पक्षीय रूप को ही अपना मंतव्य मानते हैं। समकालीन जीवन में राजनीति के बेअनुपात महत्वशाली होते जाने की ये परिणतियाँ हैं। राजनीति से लगाव बयानबाजी को फैलाता है और उससे अरुचि व्यंग की मुद्रा में फूटती है। तब कविता का राजनीति से क्या रिश्ता बने? जो मानते हैं कि समाज को बदलने में कविता एक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है, की जानी चाहिए, वे कविता को पक्षधर मानकर चलते हैं। यानी उनकी निगाह में कविता स्वयं अपना कोई पक्ष नहीं बना सकती और इसे अनिवार्यतः पहले से दिए हुए पक्षों में से किसी एक को धारण करना है। समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में कविता की क्या स्थिति है, यह एक विचारणीय प्रश्न है, विशेषतः समकालीन कविता के आग्रहों के संदर्भ में। इस विवेचन के लिए निराला के दो उद्धरण लिए जा सकते हैं। दोनों उनके उत्तरकालीन काव्य के हैं। रामविलास शर्मा द्वारा संपादित निराला की प्रतिनिधि कविताओं के संकलन राग विराग से लिए गए हैं। पहला अंश बेला संकलन से है। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ। दूसरा गीत गीत गुंज से है। जिधर देखिए श्याम विराजे, श्याम कुंजवन श्याम यमुना श्यामा, श्याम गगन घन वारिद गाजे, श्याम धरा तृण गुल्म श्याम है, श्याम सुरभि अंचल दल साजे, श्याम काम रवि श्याम मध्य दिन, श्याम नयन का जल के आजे, श्रुति के अक्षर श्याम देखिए, दीप शिखा पर श्याम निवाजे, श्याम तामर सुश्याम सरोवर, श्याम अनिल छवि श्याम समाजे। स्वभावतः प्रश्न उठता है कि इन दोनों उदाहरणों की संवेदना में परस्पर क्या सामंजस्य है। पहली कविता परिवर्तन कामिता को सीधे चित्रित करती है, दूसरे में साधक मन की विराट अद्वैत मूलक अनुभूति है। अब यदि सर्वत्र श्याम है तो किसानों की झोपड़ी में भी है और अमीरों की हवेली में भी, फिर यह परिवर्तन की तीव्र इच्छा क्यों? क्या दूसरा उद्धरण पहले को काट नहीं देता? इस जिज्ञासा के मूल में जाने पर एक और गहरा प्रश्न उभरता है। साहित्य विचार है या अनुभव? यदि विचार है तो सीधे विचार को प्रभावित करेगा, और यदि अनुभव है जहाँ विचार को भी गलाकर अनुभव में रूपांतरित किया गया है तो वह अनुभव को स्पर्श करेगा। विचार जल्दी बदलता है संस्कार क्रमशः। साहित्य कठिन काम करता है संस्कारों को बदलने का। विचार को बदलने का काम है दर्शन का या कि व्यावहारिक क्षेत्र में राजनीति का। अब हम प्रश्न के केंद्र में आ जाते हैं, क्या संबंध है साहित्य या कि कविता का राजनीति से? इस संदर्भ में सबसे स्पष्ट और निर्भ्रांत धारणा प्रेमचंद की है, जिनके साहित्य के बारे में कहा जा सकता है कि उसने उत्तर भारत के जीवन को बदला है। बिना इस गुमान के कि हमें जीवन को बदलना है। प्रेमचंद ने अपने प्रगतिशील लेखक संघ के भाषण में कहा था, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यहाँ मशाल के बिंब पर ध्यान दें, मशाल जलती भी है और जलाती भी है, एक मात्रा का फर्क। पर प्रेमचंद के लिए साहित्य जलने वाली मशाल है, जलाने वाली नहीं। वह राजनीति के पथ प्रदर्शक और उसे आलोक देने वाली है। साहित्य उनके लिए पक्षधर या हथियार नहीं, विवेक और अन्वेषण की प्रतीक मशाल है। ठीक इसी स्वर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारे पर नहीं नाचना चाहिए। साहित्य और राजनीति के संबंधों में तनाव जितना बढ़ता गया है, रचनाकार ने अपने आप को उतने ही बल के साथ रचना के पक्ष में प्रक्षिप्त किया है। साहित्य में और कविता में विशेषतः आधुनिक चेतना के वाहक अज्ञेय का मानना है, सिंगल एंट्रेट का मां, लेखक अनिवार्यतः सामाजिक क्रांतिकारी है। इस किशोर मोह से मैंने छुटकारा पा लिया है, लेखक सिवा अपने के कुछ को नहीं बदलता, एंट्रेट का मां। दृष्टिकोण के साथ साथ बड़ा टनटनाता वाक्य विन्यास या सुनने को मिलता है, सिंगल एंट्रेट का मां, लेखक सिवा अपने के कुछ को नहीं बदलता है, एंट्रेट का मां। ध्वनि स्पष्ट है कि रचना क्रम से बदलता वह स्वयं को है, समाज को तो संस्कारित करता है। साहित्य का प्रभाव बम्बैया फिल्म की तरह आक्रामक नहीं होता, जो जितने वेग से चढ़ता है वैसे उतर जाता है। रचना यदि रचनाकार के मन में पकने का समय लेती है तो पाठक के मन में भी संक्रमित होने का समय लेती है, और जो एक व्यक्तित्व क्रमशः दूसरे का अंग बन जाता है। तो हमारी जिज्ञासा का समाधान कैसे होता है? निराला के दो उद्धरण जो पहले रखे गए हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं? कविता की समस्या का उत्तर निराला के समकालीन और वरिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद की कविता में अनायास मिलता है। प्रसाद के झरना के मुखबंध में एक कविता है, परिचय। आरंभिक तीन पंक्तियों में जिज्ञासा है और अंतिम में उसका समाधान। उषा का प्राची में आभास, सरोरों का सर्वीच विकास, कौन परिचय था क्या संबंध, गगन मंडल में अरुण विलास। आकाश की लालिमा सरोवर के कमल की पंखुरियों में खेल उठती है, कुछ ऐसा ही संबंध रचना और उसके पाठक या के श्रोता के बीच है। यह संबंध निश्चय ही जटिल है और सिर्फ बयान या कि आयरनी के माध्यम से संभव नहीं। इसके लिए समकालीन कवि को अपनी भाषा में मूलतः निष्ठा रखनी है, साधारण भाषा में साधारण अनुभूति की पहचान करनी है। और साधारणता अथवा विशिष्टता न भाषा में है न अनुभूति में, वह है उसकी पहचान में, जो इन दोनों की अंतर प्रक्रिया में बनती है। समकालीन कविता की दशा इस समस्या से सीधे जुड़ी हुई है और इसी के समाधान में उसका दिशा संधान नहीं थे। 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, जहाँ से हिंदी कविता में आधुनिकता का स्वर प्रमुख होता है। तार सप्तक की दूसरी और परिवर्धित संस्करण की भूमिका 1963 में लिखी गई। संकलनकर्ता संपादक के शब्दों में तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। दूसरे संस्करण की यह भूमिका सन 63 में लिखी जा रही है, 20 वर्ष की एक पीढ़ी मानी जाती है। वयमेव याथा कि अनिवार्य नियम के अधीन सप्तक के सहयोगी जो 1943 के प्रयोगी थे, सन 63 के संदर्भ हो गए हैं। अज्ञेय के इस वक्तव्य के बाद 20 वर्ष और बीत गए हैं और यह संयोग से कुछ अधिक है कि अज्ञेय द्वारा संपादित चारों सप्तक संकलनों की भूमिकाएं 1983 में एक संकलन रूप में कवि दृष्टि के नाम से प्रकाशित है। कवि का प्रयोग संदर्भ बनता है और फिर क्रमशः दृष्टि के रूप में पहचाना जाता है। इस अवसर की दृष्टि से भी समकालीन कविता की दशा पर विचार न केवल प्रासंगिक है बल्कि किसी कदर जरूरी है। यह ठीक है कि रचना समस्याओं का कोई सीधा समाधान नहीं होता, और यदि कहीं होता है तो रचनाकार के अंतर्मन में। आधुनिक कविता कोई लिमिटेड कंपनी नहीं जिसकी वार्षिक बैठक के अवसर पर इसका लेखा जोखा प्रस्तुत हो और भविष्य की प्रगति का मार्ग निर्धारित किया जाए। यहाँ रास्ते अलग अलग हैं और चलने के ढंग भी। यह एक असीमित सहकार है और इसी भरोसे यह कभी कर्मशील रहता है। इस प्रसंग में कहीं कुछ रोचक अंतर्विरोध भी देखने को मिलते हैं। अशोक वाजपेयी अपने आलोचनात्मक लेखन में बहुत बार सपाट बयाने की वकालत करते दिखते हैं और स्वयं उनकी अपनी कविता वैसे ही संश्लिष्ट और बिंबधर्मी है जैसे कि शमशेर या केशव रघुवीर सहाय की। यह अंतर्विरोध स्पष्ट कविता के हक में है। युवा और युवतर कवियों के इधर अनेक संग्रह प्रकाश में आए हैं जिसके पीछे कई प्रबुद्ध प्रदेश सरकारों का प्रोत्साहन भी है। इन संकलनों में रचनाकार की बेचैनी तो परिलक्षित होती है पर वह कविता में रूपांतरित कम हुई है। पहले से बने वक्तृत्व के मुहावरे को तोड़ने में वे मुश्किल का अनुभव कर रहे हैं। फिर मुहावरे में बंध जाने पर भाषा लंबी कविता के लिए नहीं खुलती। यह ठीक है कि कविता शब्दों से ही बनती है, न प्रतीकों या अलंकारों से और न ही मुहावरों से। प्रतीकों, अलंकारों या मुहावरों का उपयोग इसी में है कि उन्हें सीधे सामान्य शब्दों के द्वारा तोड़ा जाना है। वे एक तरह से भाषा के मलबा हैं जिन्हें तोड़ फोड़ कर नए सिरे से प्रयुक्त करना होगा। सीधे सरल सामान्य शब्द बिंब की छवि में नई अर्थवत्ता से युक्त हो उठते हैं। प्रतीक, मुहावरे या अलंकार कालांतर में रूढ़ हो जाते हैं पर बिंब हर बार अपने पुराने परिचित आंतरिक संबंधों को नए रूप में स्थिर करता है और इस संश्लेष प्रक्रिया में हर बार नवीकृत होता रहता है। इसी में उसकी अर्थ क्षमता रचनाकार और पाठक दोनों सिरों पर वर्धनशील होती है। बौद्धिक विद्वानों के संदर्भ में जीवन यथार्थ की समझ इधर क्रमशः जटिलतर होती जाती है और कविता यदि बयान मुहावरों या नारों में फंसती जाए तो यह एक निरी बेमेल स्थिति होगी। इतिवृत्त और वर्णन के फैलाव को नए विकसित गद्य माध्यमों के लिए छोड़कर आधुनिक युग के पहले सशक्त काव्य आंदोलन छायावाद ने अनुभव की संश्लिष्टता पर बल दिया। यह हम इस अध्याय के पूर्वार्ध में देख चुके हैं। नई कविता ने उसे और बलपूर्वक वक्तित्व से अलग किया। उसके प्रमुख कवि नई कविता की विशेषता को बार बार रेखांकित करते हैं। बात बोलेगी हम यह प्रतिज्ञा भी शमशेर की, अपने लिए मुक्तबोध कविता में कहने की आदत नहीं स्वीकार करते हैं। आगे तो बड़बोलेपन के हमेशा विरुद्ध रहे और अपनी कविता में भी और समीक्षा में भी। आंगन के पार द्वार की पहली कविता में सरस्वती पुत्र इस युग के शोर शराबे में कवि की आत्मानिवेश वृत्ति को महत्व देता है। भूमिकाओं के अपने नए संकलन कवि दृष्टि में उनकी प्रमुख शिकायत यही है। मैंने अन्यत्र कहा है कि आज कविता बहुत बोलती है। असल में तो मुझे यह कहना चाहिए कि आज कवि इतना अधिक बोलता है कि कविता की बोलती बंद हो जाती है। आज कविता की रचना नहीं होती बल्कि पद्य का इस्तेमाल होता है और इसीलिए इस्तेमाल होता है कि कवि को बोलने का अवसर मिले। भूमिकाओं की भूमिका क्यों समकालीन कविता राजनीति का हथियार बनने के नादान उत्सुकता में कविता से पहले बयान होना चाहती है या आधुनिक कविता के समूचे विकास को नकारना है। प्रसाद, निराला, अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर की विकास प्रक्रिया को उलट देना है। वर्णनात्मक गद्य, पत्रकारिता, सिनेमा और पोस्टर के दायित्व को स्वीकार करके कविता का यह रूप समकालीन संदर्भों में अपनी विशिष्ट भूमिका की अनदेखी करके संचार माध्यमों से बोर्ड में जा फंसा है। यह दशा की जड़ता दिशा की गति में कैसे परिणित हो, यही प्रसाद शताब्दी वर्ष में संवेदनशील कवि और प्रबुद्ध पाठक की मुख्य चिंता है। निराला और परवर्ती कविता पुस्तक में इस आलेख में निराला विषयक तीसरे अध्याय की कुछ सामग्री का कई अनुच्छेदों के रूप में प्रयोग हुआ है। पुस्तक बंद। निराला का काव्य परवर्ती विकास क्रम में जैसे सहज भाव से जुड़ता है वैसा किसी अन्य का नहीं। इसी का एक कारण यह भी है कि निराला का अपने काव्य में जैसा वैविध्य है वैसा उनके समकालीन अन्य किसी कवि में है। 18 अप्रैल 1936 के एक पत्र में निराला अपने वरिष्ठ कवि मित्र जयशंकर प्रसाद को हल्के व्यंग्य की मुद्रा में लिखते हैं, इनोटेड कामा, पर मैंने सुना है आप उपनिषदों से नीचे उतरना पसंद नहीं करते, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा यदि आपको नीचे उतार सकूं, इनोटेड कामा। निराला के इस संक्षिप्त पर्यवेक्षण के पीछे प्रसाद और निराला दोनों द्वारा परंपरा के प्रयोग के कुछ संकेत छिपे हुए हैं। प्रसाद अपने से पहले की समूची हिंदी काव्य परंपरा को अपने कृतित्व में समाहित किए हैं। निराला फिर परंपरा के अगले क्रम को पूर्वांशित करते हैं। आधुनिक हिंदी के दो शीर्ष कवियों के व्यक्तित्व के यह सर्वथा योग्य बंटवारा है। प्रसाद के चित्राधारा में संकलित ब्रजभाषा काव्य में सूर के विनयपद, रीतिकालीन देवमतिराम के कवित्व सवैये और भारतेंदु के मनोहार की गूंज स्पष्ट सुन पड़ती है। फिर उनके कानन कुसुम में खड़ी बोली कविता की द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता आती है और उसके बाद वह नई काव्य भंगिमा विकसित होती है जिसे आगे चलकर छायावाद नाम दिया गया। एक आरंभिक कविता का शीर्षक है संध्या तारा, जो एक प्रकार से छायावाद की प्रसिद्ध सांध कविताओं का प्रवर्तन रूप कहा जा सकता है। यहाँ काव्य भाषा ब्रजभाषा है, वर्णन शैली द्विवेदी युगीन और विषय नई काव्य चेतना को द्योतित करता है। यह प्रसाद का यह काव्य आरंभिक काव्य संवेदनात्मक त्रिवेणी का अद्भुत साक्ष्य है। एलियट की उक्ति की परंपरा में सभी कवियों का सहवर्तित्व होता है का विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रसाद और निराला का काव्य अपने अपने ढंग से। प्रसाद के दूसरी ओर आते हैं निराला, वे अपने से आगे आने वाले हिंदी काव्य परंपरा को पूर्वांशित कर लेते हैं। छायावाद के वे श्रेष्ठ कवि हैं कई संदर्भों में। प्रगतिवादी काव्य आंदोलन का वास्तविक रूप उनके अगले प्रयोगों में द्रष्टव्य है। फिर प्रयोगवाद और नई कविता से लेकर शब्दों के खेल तक उनके विविध प्रयोग मिलते हैं। परंपरा और प्रयोग का अनवरत क्रम यही जैसे कवि के लिए वसंत का वास्तविक अर्थ है, जिसके उत्सव को उन्होंने अपना जन्मदिन माना और अपने आरंभिक संकलन अनामिका में घोषित किया, मैं ही वसंत का अग्रदूत। निराला की एक बड़ी विशेषता यह है कि न केवल उन्होंने परंपरा से विद्रोह करके उसे अपने ढंग से गतिशील किया, वरन स्वयं अपनी उपलब्धियों में से भी वे निरंतर संघर्ष करते रहे, जिनसे कालांतर में परंपरा बननी थी। उनके काव्य विकास के तीन चरण तत्सम, तद्भव, देशी कवि की बहुत कुछ इस मनोवृत्ति को प्रतिफलित करते हैं। यह सतत विद्रोही भाव एक बड़ा कारण है निराला के काव्य वैविध्य का। जूही की कली से लेकर पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है तक एक लंबी काव्य यात्रा है, जिसमें कवि रास्ते के साथ साथ बराबर अपने भी पहचान करता चलता है। निराला के ये सभी रूप अपने अपने ढंग से आकर्षक, यद्यपि उनमें से कई एक दूसरे की प्रतिरोधी दिखाई देते हैं। ये काव्य स्तर परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया में निराला के कवि व्यक्तित्व को विराटतर तथा गतिशील बनाए रखते हैं। हिंदी कविता के इतिहास में वैविध्य की यह काव्य प्रक्रिया, जैसा कहा गया, अपने आप में अतुलनीय है। निराला ने मुक्त छंद रचना कर्म में किसी व्यावहारिक सुविधा के लिए नहीं रचा, वरन उसे अपने काव्य प्रवाह में गति लाने के लिए एक आवश्यक के अवरोध के तौर पर देखा। कठिन छंद तो जैसा निराला ने तुलसीदास में लिखा है, वैसा शायद ही हिंदी के किसी कवि ने अपने लिए चुना हो। छह पंक्तियों का छंद, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी की तीन तीन चौथाई में तुक विधान और फिर इसी तरह चौथी, पांचवी, छठी की तीन चौथाई में तुक, तीसरी और छठी पंक्ति का अंत्यानुप्रास अलग से एक उदाहरण प्रस्तुत है। कुछ समय अनंतर स्थिर रहकर स्वर्गीयाभा व सरित प्रखर स्वर में झरझर जीवन भरकर ज्यो बोली, अचपल ध्वनि की चमकी चपला बल की महिमा बोली अबला, जागी जल पर कमला अमला मति डोली। छंद के कठोर बंधन में रत्नावली का सात्विक क्रोध जैसे और कसमसा रहा हो। यहाँ छंद कविता का वाहक नहीं, उसका अनिवार्य अंग बन गया है। छंद में मुक्त छंद का प्रणेता कितने गहरे संवेदनात्मक स्तर पर छंद को उठाता है, यह किसी भी सहृदय श्रोता पाठक द्वारा आसानी से लक्षित किया जा सकता है। काव्य वैविध्य के लंबे दौर में निराला के यहाँ क्लासिकी, रोमांटिक तथा आधुनिक तत्व एक साथ दिखाई देते। निराला में जैसे प्रसाद, निराला, अज्ञेय तीनों घुले मिले हैं। मुक्त छंद और छंदपत्र, राम की शक्ति पूजा को कुर्मत्ता, तत्सम, तद्भव, देशी, प्रबंध गीत, मुक्तक, विधान, काव्य भाषा और बंध के इन विविध स्तरों पर निराला समान क्षमता के साथ सक्रिय है। इस वैविध्य को साधने के कारण है निराला बिना महाकाव्य लिखे महाकवि हैं। इस रूप में परवर्ती दौर के एक अन्य शीर्ष कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अपने पहले संग्रह में उनका स्तवन किया। भूल कर जब राह भटक्का मैं, तुम्हें झलके हे महाकवि सघन तम की आंख बन मेरे लिए। परवर्ती पीढ़ी का निराला के प्रति यह बहुत सही कृतज्ञता ज्ञापन, जिसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और विवेचन अनेक कवियों और आलोचकों में देखी जा सकती है। निराला के पहले महाकवि विश्लेषण महज औपचारिक नहीं, सिर्फ समानार्थी नहीं, बल्कि कवि शमशेर के शब्दों में एक कृतज्ञ रचना पीढ़ी का आभार प्रदर्शन है। निराला का संपूर्ण काव्य व्यक्तित्व वृद्धों का सामंजस्य की उस अवधारणा में से जैसे विकसित हुआ है, जिसे कवि के समकालीन और प्रसिद्ध समीक्षक रामचंद्र शुक्ल ने आनंद की साधनावस्था की उच्चतम रचना भूमि का कारक तत्व स्वीकार किया है। जैसा उल्लेख किया गया, निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं और फिर सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन करते हैं। एक ओर राम को शक्ति पूजा तथा अनेक गीतों में तत्सम शब्दावली का आग्रह है, तो दूसरी ओर कुकुरमुत्ता में अबे सुनबे गुलाब की ठेठ देसी भंगिमा है। श्रृंगार गीतों में प्रणय की उद्दाम स्थितियों का उन्मुक्त अंकन है। जैसा प्रसाद की आंसू और लहर गीतों में भी नहीं मिलेगा, तो फिर तुमसे लाग लागी जो मन की जाग जग की हुई वासना बासी का मार्मिक उद्घोष है। स्मरण है कि छायावाद ये किसी कवि ने भक्ति गीतों की ऐसी श्रृंखला नहीं लिखी। अभिनव अभिनव पत्रिका की तरह जैसे निराला ने अपने रचनाक्रम में आदि से अंत तक लिखी है। जीवन और रचनाक्रम दोनों में मूलतः विद्रोही होने के बावजूद उनके प्रिय कवि हैं कठोर मर्यादावादी कवि मर्यादावादी कवि तुलसीदास। प्रवृत्तिगत वैविध्य के अतिरिक्त निराला के दीर्घ काव्य विकास में अगले रचना आंदोलनों प्रगतिवाद प्रयोगवाद और नई कविता के बीच मिल जाते हैं। उनके संकलन नए पत्ते से चलने वाले अंतिम दौर में इस प्रकार की अनेक कविताएं द्रष्टव्य हैं। इस बिंदु से हिंदी कविता के 50 वर्ष पूरे होते हैं। 1942 में प्रकाशित कुकुरमुत्ता तो प्रगतिवादी विचारधारा और रचनात्मकता का अघोषित मैनिफेस्टो कहा जा सकता है, जहां सर्वहारा की क्षमता को अनेक रूपों में प्रदर्शित किया गया है। भाषा भंगिमा छंद सब उसके अनुकूल हैं। उस काल की अनेक कविताएं जो बेला और नए पत्ते में संकलित हैं, जैसे जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, झिंगुर डटकर बोला, राजे ने अपनी रखवाली की, चरखा चला, अधिकतर इस मना स्थिति को द्योतित करती है। इसी अवधि में दगा की या कि सड़क के किनारे में प्रयोगवाद की भंगिमाल मिलेगी और फिर नई कविता का नवीनतम शब्द खेल है ताक कम सिनवारी। ये प्रयोग कभी निरर्थक लगेंगे, पर कभी इनमें अर्थ भी झलकेगा, खास तौर से यदि हम फारसी उर्दू कम सिन को समझें और वैदिक संस्कृत प्रयोग सिनवाली को अर्थ वैदिक देवी या कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक साथ स्मरण रखें। तो यूं इस पूरे विकास क्रम को ध्यान में रखकर ही कहा गया कि आधुनिक कविता में निराला आलाप से लेकर तराना तक स्वयं है। परवर्ती कविता से निराला की सक्रियता दुतरफा चलती है। नए कवि उनसे प्रेरणा लेते हैं। शमशेर की कविता का उल्लेख पहले हुआ है। रामविलास, शिव मंगल सिंह, सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और अज्ञे इन सबके प्रिय कवि निराला हैं। इन्होंने निराला को संबोधित कविताएं लिखी, आलोचनात्मक और वैयक्तिक मूल्यांकन किए। इलाहाबाद नगर में नवलेखन की पीढ़ी अपनी गोष्ठी का नाम परिमल रखती है और पत्रिका का नए पत्ते। उधर निराला के दिलचस्पी अपने से ठीक बाद के काव्य प्रयोगों में बराबर बनी रहती है। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक की प्रति संपादक अज्ञे निराला के पास समानार्थ भेजते हैं। 14/6/1944 के पत्र में निराला उसकी पहुंच संकलन के सहयोगी कवि और अपने मित्र तथा भावी जीवनीकार रामविलास शर्मा को लिखते हैं, कल तार सप्तक संग्रह मिला, अच्छा निकला है, फिर आलोचना लिखूंगा, अभी बहुत गर्मी है, विशेष लिखा नहीं, अज्ञे का पता नहीं मालूम, हालांकि तार सप्तक उन्हीं का भेजा हुआ है, सिर्फ शिलंग लिखा है, इन रचनाओं का रूप मेरी दृष्टि में निखर रहा है। इति .com पर यहाँ महाकवि की बड़ी संतुलित और साधारण प्रतिक्रिया है अपने कनिष्ठ सहयोगियों के रचना उपक्रम की प्रति। स्पष्ट है उसका पूरा मूल्यांकन करने के लिए वे समय चाहते हैं, पर 46 तक का उनका अपना काव्य नई काव्यधारा को कुछ पूर्वाशित करता है और कुछ उसके साथ चलता है। बाद में दुर्भाग्यवश उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाता है। वे इधर उधर की बात करते हैं, रूपकों की संधा भाषा बोलते हैं और अधिकतर वह स्वाड़ी या कि अंग्रेजी का बातचीत में प्रयोग करते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता की रचनावधि भी उनकी मनः स्थिति का कुछ अनुमान उनके तब के जीवनीकार और मित्र गंगा प्रसाद पांडे के एक संस्मरणात्मक लेख से लगता है। नए पत्ते पत्रिका के जनवरी फरवरी 53 के अंक में प्रकाशित इस लेख का शीर्षक है निराला जी आजकल। लेख का समापन निराला जी के कुछ अंग्रेजी वाक्यों के साथ होता है। आई हैव कंबाइंड द कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी आर्ट टू द फिलोसफी ऑफ लिविंग, यानी साहित्य के क्षेत्र में मेरा योगदान स्वयं जीने की पद्धति से एकाकार हो गया है। आई एम मेकिंग अ एग्जाम्पल ऑफ प्लेइंग द सेम कार्ड इन लाइफ एंड लिटरेचर, जीवन और साहित्य के खेल में मेरे पत्ते एक ही हैं। इस अवधि में आराधना के गीत लिखे जा रहे हैं या सूचना संस्मरणकार ने दी है, अर्थात इस बिंदु पर पहुंचकर जीवन रचना कवि के निकट एक हो चुके हैं। लीला का संवरण समय निकट आ रहा है। इधर नई कविता की अपनी मानसिकता पक रही है जो पत्रिका रूप में 1954 में प्रकट होती है, नए पत्ते जैसे उसका पूर्वाभास था। इस मानसिकता की कुछ पृष्ठभूमि निराला के अस्त व्यस्त बातचीत में मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता नवलेखन का दौर अधिकतर दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध के समानांतर चला। निराला के यहाँ यह वर्णन इस प्रकार चलता है, यूनाइटेड कामा, गंगा जी सूख गई हैं, हमने तो गंगा भी छोड़ दी पर भूख नहीं छूटती। बाप रे बाप, जानते हो गंगा में तो बहुत बड़े घड़ियाल हैं, जल भ्रष्ट कर रहे हैं और आदमियों को पकड़ते हैं, एक पेट पकड़ता है एक सिर, दोनों बड़े भयानक हैं। यूनाइटेड कामा, गंगा प्रसाद पांडे की टिप्पणी इस संवाद पर है, यूनाइटेड कामा, कहना न होगा कि इस रूपक से वे रूस की विचारात्मक भौतिकवादी एवं अमेरिका की संपत्ति के बल पर संसार को जीतने की आकांक्षा को ही फटकार बताना चाहते हैं। गंगा देश की संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता का प्रतीक है, यह भी स्पष्ट है, यूनाइटेड कामा बंद। यहाँ जोड़ना होगा कि अपनी मानसिक अस्तव्यस्तता के बीच भी निराला नए रचनाकार को उस समय की बुनियादी समस्या से ठीक ठीक अवगत करा रहे हैं, और यह निश्चय ही संयोग से अधिक है कि नए पत्ते के इसी अंक में निराला विषयक इस संस्मरण लेख से ठीक पहले अज्ञेय की नई कविता शीर्षक व ध्वनि वार्ता प्रकाशित हुई, जहाँ नई कविता पद का पारिभाषिक ढंग से पहला प्रयोग हुआ है।